लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मानव विकास के लिए प्रतिबद्ध स्वयंसेवी और गैर लाभकारी संगठनों को सबकी भलाई के लिए समर्पित लोग मिलें तथा वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लगातार नए रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थ यात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले,
बोंजोर्नो। Nel processo del discernimento è importante rimanere attenti anche alla fase che immediatamente segue la decisione presa.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आत्म परीक्षण की प्रक्रिया में हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने निर्णय के उपरांत होने वाली बातों पर गौर करें। संत पापा ने कहा कि मुझे एक निर्णय लेना है, इसके लिए मैं प्रार्थना करते हुए आत्म परीक्षण करता और इस प्रक्रिया के अंत में निर्णय लेता हूँ। इस प्रक्रिया के बाद हमें चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक निशानियों को देखें जो हमारे निर्णय को उचित होने की सुदृढ़ता प्रदान करती हैं या उसे अनुचित निरूपित करती हैं। यह इसलिए क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन के सही और गलत निर्णय कुछ निशानियों के द्वारा अपनी सुदृढ़ता को प्राप्त करती हैं। वास्तव में हमने इस बात पर गौर किया कि समय कैसे अपने में एक आधारभूत शिला होती, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर की वाणी को बहुत सारी आवाजों के बीच में पहचानते हैं। केवल वे ही समय के ईश्वर हैं, जो उनकी वास्तविकता की एक मौलिक निशानी है। एक अच्छी आत्मा के कार्यों की सुनिश्चित निशानी हमारे लिए यह है कि यह हमारे लिए अनंत शांति लाती है, एक शांति जो हमारे लिए सामंजस्य, एकता, जोश, उत्साह लाती है। संत पापा ने प्रार्थना करने के निर्णय को एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि मैं आधा घंटा प्रार्थना में व्यतीत करने का निर्णय लेता हूँ, इसके बाद मैं पूरे दिन को बेहतर तरीके से व्यतीत करने में सक्षम होता हूँ। मैं अपने को शांति में पाता हूँ, चिंताएं मुझ में कम हो जाती हैं, मैं अपने कार्यों को उत्साह और अधिक बेहतर ढंग से करता हूँ, मेरा संबंध कुछ मुश्किल लोगों के संग भी सहज हो जाता, तो ये सारी बातें मुझे उस अच्छे निर्णय की ओर इंगित कराती हैं। आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए गोलाकार होता है, अच्छी चीजों का चुनाव हमारे पूरे जीवन के लिए लाभप्रद होता है। यह इसलिए क्योंकि इसके द्वारा हम ईश्वर की सृजनात्मकता में सहभागी होते हैं। हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, संत पापा ने कहा, जो निर्णय के उपरांत हमारे लिए चीजों को सुस्पष्टता प्रदान करती हैं, विशेष रूप से हमारा निर्णय सही है या नहीं। इसके संबंध में हमने कुछ चीजों के बारे में अपने धर्म शिक्षा माला में पहले ही जिक्र किया है, लेकिन हम उनके संबंध में और कुछ बातों को देख सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि पहले स्थान में हम यह देखते हैं कि हमारा निर्णय ईश्वरीय प्रेम के उत्तर अनुरूप और उदारता में है या नहीं। यह भय मनोभावनाओं के ब्लैकमेल या दबाव में उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यह कृतज्ञता में ईश्वर से मिले उपहार के कारण होता है, जो हमारे हृदय को उद्वेलित करता और हम उनके संग स्वतंत्र रूप में एक संबंध स्थापित करते हैं।
Un altro elemento importante è la consapevolezza di sentirsi al proprio posto nella vita.
एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जीवन में अपने अस्तित्व का एहसास, जहां हम अपने को ईश्वरीय वृहद योजना के अंग स्वरूप पाते हैं। यह हमें अपनी ओर से कुछ करने की चाह उत्पन्न करता है। संत पेत्रुस के प्रांगण में दो खास केंद्र बिंदु हैं, जहां से हम सारे स्तंभों को सर्वश्रेष्ठ संरेखित देख सकते हैं। उसी भांति एक व्यक्ति जब अपने को व्यवस्थित पाता तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसे वह मिल गया है जिसकी खोज वह कर रहा है। वह अपने जीवन की बहुत सारी बातों में सामंजस्य की वृद्धि को पाता है। वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को क्रमशः व्यवस्थित करता है। वह सहज ही ऐसा कर लेता और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना उत्साह और धैर्य से करता है। निर्णय की सुदृढ़ता के संबंध में एक दूसरी अच्छी निशानी यह है कि वह अपने निर्णय के संबंध में अपने को स्वतंत्र पाता है। वह इसके बारे में स्वयं से प्रश्न कर सकता है। असंभावना की स्थिति में वह अपनी तत्परता में उसका परित्याग कर सकता है। उन सारी परिस्थितियों में वह ईश्वर की योजना को जानने की कोशिश करता है। यह इसलिए नहीं कि वे हमें उन चीजों से वंचित करने की चाह रखते हैं जो हमारे लिए प्रिय हैं, बल्कि इसलिए कि हम बिना आसक्ति से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करें।
Solo Dio sa che cosa è veramente buono.
केवल ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सचमुच अच्छा है। किसी चीज के प्रति स्वामित्व का भाव अच्छाई का शत्रु होता है, जो प्रेम को खत्म कर देता है। घरेलू संदर्भ में हिंसक घटनाएं, जिनकी चर्चा हम दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अखबारों में देखते हैं, सदैव प्रेम को अपने अधिकार में करने के कारण होता है। किसी को सदैव सुरक्षा में रखने की चाह उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करती, जीवन का गला घोंट देती और उसे नरक बना देती है। संत पापा ने कहा कि हम केवल स्वतंत्रता में प्रेम करने के योग्य होते हैं। यही कारण है कि ईश्वर ने हम सबों को स्वतंत्र बनाया है, जहां हम उन्हें भी नकार सकते हैं। हम जिन चीजों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उन चीजों को उन्हें देना हमें जीवन और उसकी सच्चाई को सही अर्थ में जीने के योग्य बनाती है। उन्होंने जीवन का दान हमें अपनी उदारता में एक मुफ्त उपहार स्वरूप दिया है, जहां हम अपने जीवन के इतिहास और इसकी सारी चीजों को उनके करुणामय हाथों में सौंप देते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल इसे हमारे लिए ईश्वर का भय कहता है, अर्थात हम उन पर श्रद्धा रखते, उन्हें आदर देते हैं। ऐसा नहीं कि यह हम में भय उत्पन्न करता है। यह भय है जो हमारे जीवन के अन्य सभी भयों को हमसे दूर कर देता है, क्योंकि यह उस ईश्वर की ओर अभिमुख है जो सभी चीजों के स्वामी हैं। उनकी परिस्थिति में हमें कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती है। संत पौलुस इस बात को आश्चर्यजनक रूप में अनुभव करते हुए कहते हैं, मैं दरिद्रता और संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतराव चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। संत पापा ने कहा, वे स्वतंत्र व्यक्ति हैं जो सभी परिस्थितियों में ईश्वर की महिमा करते हैं। हम इस बात को अनुभव करते हैं, संत पापा ने कहा, कि एक अच्छा निर्णय लेना अपने में जटिल है। और यह हमारे लिए इस बात को सुनिश्चित कराता है कि हम अपने स्वास्थ्य, भविष्य, अपने प्रिय जनों, हमारी योजनाओं को अपने में नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने विश्वास को दुनिया के सृजनहार में बनाए रखें, जो हमें अतुल्य प्रेम करते हैं और जो यह जानते हैं कि हम उनके साथ कुछ आश्चर्यजनक चीजों का निर्माण कर सकते हैं जो अनंत हैं। संतों का जीवन इसे हमारे लिए अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। हम इस तरह निर्णयों को लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमारे हृदय के अंदर होने वाली बातों के लिए प्रार्थना करते हुए जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में अपने बुधवारीय साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को फिर से याद किया। पोलिश तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इतिहास आज खुद को दोहराता है। पोलैंड में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबिलेस्की के कैथोलिक यहूदी संबंध केंद्र द्वारा सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां ऑपरेशन रेनहार्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा पोलिश यहूदियों के खिलाफ की गई तबाही को याद किया। 1942 और 43 के बीच यहूदी लोगों के खिलाफ नरसंहार करने के नाजी जर्मनी के प्रयास के सबसे घातक चरण को चिन्हित किया गया। कुल मिलाकर लगभग 1.7 मिलियन यहूदियों को बेल्सेक, सोबीबोर और ट्रेनली का संहार शिविरों में और संबंधित सामूहिक गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। संत पापा ने कहा, इस भयानक घटना की स्मृति में सभी में शांति के लिए संकल्प और कार्यों को जागृत करें। 8 दिसंबर गुरुवार को कुमारी मरिया के निष्कलंक गर्भाधान पर्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने विश्वासियों को युद्ध की क्रूरता और विशेष रूप से पीड़ाग्रस्त यूक्रेन के पीड़ित सभी लोगों को आराम देने के लिए ईश्वर की मां से प्रार्थना करने का आह्वान किया। जैसे ही यूक्रेन में ठंड शुरू हो रही है और सर्दी का ताप संकट शुरू हो रहा है, उदार सेवा के लिए गठित परम धर्मपीठ विभाग ने एक नए आउटरीच अभियान की घोषणा की, ताकि यूक्रेन के लोगों को आगे की कठोर सर्दी से बचने में मदद मिल सके। संत पापा के दानदाता कार्डिनल कॉनराड द्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति में कहा गया कि यूक्रेनी लोग न केवल युद्ध से जुड़े आपातकाल का सामना कर रहे हैं, बल्कि बिजली, गैस की कमी और कड़ाके की ठंड से भी जुड़े हुए हैं। इस कारण से परम धर्मपीठीय विभाग पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से स्कीइंग के लिए उपयोग किए जाने वाले थर्मल जम्पर्स, जैकेट वगैरह एकत्रित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि लगभग 7 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित यूक्रेनी अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होने के बाद पहले से ही ठंड की स्थिति का सामना कर रहे हैं। कई लोग क्षतिग्रस्त इमारतों में शरण ले रहे हैं, जहां बिजली और हीटिंग की कोई सुविधा नहीं है। यूक्रेन के असैन्य ऊर्जा स्थलों पर रूस द्वारा अपने मिसाइल हमलों को तेज करने के बाद ताप संकट और भी बदतर हो गया है, जिससे देश भर में बिजली की कमी हो गई, साथ ही यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। नवंबर के अंत में पहली बार इसके सभी 15 परमाणु रिएक्टरों को युद्ध की वजह से ऑफलाइन कर दिया गया। उधर एशियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलन संघ FABC के सहायक महासचिव फादर विलियम लारूस हाल ही में धर्म सभा के आयोजकों के एक सम्मेलन में भाग लेने रोम आए थे। उन्होंने 2 दिवसीय बैठक के बाद वाटिकन न्यूज से बात की और सिनोड में एशियाई कलीसिया की भागीदारी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने विश्वव्यापी प्रक्रिया की लॉन्च पैड सहायक संरचना वाला एक मंच के रूप में कार्य किया है। फादर लारूस ने अब तक सिनोडल प्रक्रिया में एशिया के विभिन्न धर्माध्यक्ष सम्मेलनों की भागीदारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमें लगभग सभी सम्मेलनों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसा लगता है जैसे सम्मेलनों की एक अच्छी संख्या सिनोडल प्रक्रिया के साथ बहुत पहले से ही शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि उनमें से कई भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। विभिन्न सम्मेलनों से इसके बारे में बहुत उत्सुकता दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा है कि सभी ने इस पर काफी लगन के साथ काम किया है। उधर अफ्रीकी राष्ट्र के पूर्वी प्रांतों में चल रही हिंसा और विदेशी हस्तक्षेप के विरोध में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 4 दिसंबर को धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा प्रायोजित शांतिपूर्ण मार्च का एक राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया गया था। विदेशी हितों को आकर्षित करने वाले खनिज संसाधनों से समृद्ध उत्तरी किवू और इटूरी के पूर्वी प्रांतों में बढ़ती हिंसा और असुरक्षा के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी रविवार को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हुए। किशानसा के कार्डिनल अम्बोगो बेसुगु ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित एक संदेश में कहा, प्रत्येक कोंगो नागरिक को जो अपने देश से प्यार करता है और अपने लोगों की पीड़ा से प्रभावित है, DRC के विभाजन की परियोजना का विरोध करने के लिए उठना चाहिए, जिसमें उन्होंने समझाया कि इस पहल का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी दुनिया को दिखाना था कि हम राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट हैं, हमारे देश की एकता, संप्रभुता और हमारे लोगों की गरिमा के लिए एकजुट हैं। लगभग 3 दशकों से उत्तरी किवू और इटूरी प्रांत हिंसा से जूझ रहे हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र के मोनोस्को के शांति सैनिक शांत करने में कामयाब नहीं हुए हैं। कोंगो के अधिकारी इन क्षेत्रों में विद्रोही आंदोलनों को प्रायोजित करने के लिए रवांडा और युगांडा को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है और किगाली और किशांसा के बीच तनाव बढ़ रहा है। पूर्वी कोंगो में चल रही असुरक्षा के कारण 31 जनवरी से 30 फरवरी 2023 तक अफ्रीकी राष्ट्र की प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए गोमा नहीं जाएंगे, जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी। इसके बजाय वे 1 फरवरी को किशांसा के प्रेरितिक दूतावास में उनसे मुलाकात करेंगे। उधर कतर स्थित समाचार चैनल अल जजीरा ने पत्रकार शिरीन अबू अकला की हत्या पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में इजरायली सेना के खिलाफ मामला दायर किया है। शिरीन अबू अकला मई 2022 में जेनिन से एक इजरायली छापे पर रिपोर्टिंग कर रही थी, जिसमें सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच गोलीबारी देखी गई थी। एक अन्य पत्रकार अली समौदी को भी पीठ में गोली लगी, पर वे बच गए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।